हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लीला शिवांशा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। उसे किसी भी कीमत पर शिवांशा अपने घर में नौकरानी के तौर पर वापस चाहिए थी। अब तक लीला जब भी चौहान पैलेस में जाती थी, तब उसे कोई न कोई बाहर निकाल देता था। इस बार लीला ने मिलने के लिए बाहर की जगह चुनी, और उसने अपने मकसद के लिए नव्यांशी को चुना था। नव्यांशी को सिलेक्ट करने के लिए गीतिका नहीं कहा था। नव्यांशी सुबह सुबह जब काम पर पहुंची, तब लीला उसके सामने आ गई थी। उसने अपने हाथ में एक एल्बम ले रखा था, जिसके अंदर शिवांशा की देवराज और बाकी परिवार के साथ तस्वीरें थीं। हमेशा की तरह नव्यांशी ने लीला से बदतमीजी से बात की और उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया था, लेकिन लीला ने जबरदस्ती एल्बम को खोला और उसके सामने कर दिया। एक बार देखो तो, उसके बाद न सिर्फ तुम्हारी प्यारी भाभी बल्कि तुम्हारे भाई का भी असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। लीला ने उन भाई बहनों के बीच में फूट डालने की कोशिश की। वेद ने भी उसे काफी बार बेइज्जत किया था। ये वेद के प्यार का ही नतीजा था कि उसके भाई बहन उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करते थे। नव्यांशी ने गहरी सांस ली और लीला से पीछा छुड़ाने के लिए उस तस्वीर को एक बार देखने का सोचा। उसने अपनी नजरें नीचे की ही थीं कि अचानक किसी ने उससे एल्बम को लीला के हाथ से छीन लिया था। लीला और नव्यांशी दोनों ही हैरानी से सामने की तरफ देख रही थीं, जहां वेद खड़ा हुआ था। ऑफिस जाने से पहले वेद नव्यांशी की प्रोग्रेस देखना चाहता था, इसीलिए वो उसे बिना बताए वहां पर आया था। नवी, मुझे नहीं पता था कि तुम काम के बहाने ऐसे लोगों से मिलती हो। अच्छा हुआ जो मैं यहां अचानक आ गया और मुझे सच पता चल गया, वरना मैंने तो लगभग तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच ही लिया था, वेद सर्द आवाज में बोला। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, मेरा यकीन कीजिए, मेरा काम के अलावा कहीं फोकस नहीं है, ये अचानक मेरे सामने आ गई थी, नव्यांशी ने जल्दी से अपनी सफाई में कहा। मैं जब रोड पर चलता हूं तो मेरे सामने बहुत बार आवारा कुत्ते आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके पास में खड़ा होकर उनसे बातें करने लगूं। तुम अच्छे से जानती हो कि ये औरत कैसी है और इसके परिवार ने शिवांशा के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद तुम यहां खड़ी होकर इसके साथ बात कर भी कैसे सकती हो। इससे बात करने का मतलब यही है कि इस झूठी औरत को बात सुनाने का मौका देना। लगता है तुम्हें अपने भाई पर यकीन नहीं है, जो तुम्हें बाहर वालों की जरूरत पड़ने लगी, वेद ठंडे लहजे में बोला। वेद जानता था कि नव्यांशी की कोई गलती नहीं रही होगी, लेकिन उसका नव्यांशी से इस तरह बात करना जरूरी था ताकि आगे से वो गलती से भी लीला की बातों में ना आए। वहीं वेद के गलत समझने पर नव्यांशी का चेहरा उतर गया था। उसने भारी आवाज में कहा, ट्रस्ट मी भाई, मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आप पर यकीन है, और इसकी बातों पर मैं क्यों यकीन करूंगी, ये बस बार बार सामने आकर रास्ता काटती रहती है, मैं बस यही सोचा कि इसे टालने के लिए इसकी बात मान लेती हूं। आई एम रियली सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं किसी बाहर वाले के सामने तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, अपनी वर्क स्पेस में जाओ, वहीं पर बात करते हैं और इससे मैं निपटता हूं, वेद बोला। नव्यांशी ने उसकी बात पर हां भरी और वहां से जाने लगी। उसे लीला पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वेद उसे गलत समझ रहा था। अपने ऑफिस की तरफ जाते हुए नव्यांशी ने मन ही मन कहा, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने उन्हें देखने के बारे में सोचा भी। हर कोई अच्छे से जानता है कि लीला राजावत कैसी है। ऊपर से शिवांशा भाभी की शादी मनन से होने वाली थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तो उसे नीचा गिराने की ही कोशिश करेगी। मैं सपने में भी अपने भाई के ऊपर शक नहीं कर सकती हूं। मैं भाई को ये बात समझा दूंगी और आगे से मैं कभी गलती से भी इस औरत से बात नहीं करूंगी। नव्यांशी ऊपर चली गई थी तो वहीं उसके जाने के बाद वेद सर्द निकाहों से लीला की तरफ देख रहा था। वेद को अचानक अपने सामने पाकर लीला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ऊपर से वो बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी। आज तो उसे देखने से रोक लिया, लेकिन आगे क्या करोगे? मैंने देखा अभी तुम्हारी बहन तुम पर भगवान से भी ज्यादा यकीन करती है, लेकिन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका भगवान उसे झूठ बोल रहा है, लीला ने सिर हिलाकर कहा। मेरी बहन की फिक्र करने के बजाय आप अपने बेटे की टेंशन लेंगी तो ज्यादा सही नहीं रहेगा। सुना है आपके बेटे का पैर टूट गया है, वेद ने जवाब दिया। लीला खुद को कितना भी पावरफुल क्यों ना समझे, पर सच ये था कि वेद सिंह चौहान के आगे उसकी कोई औकात नहीं थी। वेद की बात सुनकर उसने जल्दी से नामे सिर हिलाया और घबराकर बोली, मैंने अभी एक घंटे पहले ही उससे बात की थी, उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा नहीं हुआ है क्या? क्या पता हो जाए। ऐसा कीजिए कि आप फिर से उससे बात कीजिए, वेद ने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। लीला ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला तो वहीं वेद का मोबाइल भी उसके हाथ में था। लीला तो जानती तक नहीं थी कि वेद ने उसके सामने खड़े खड़े ही अंकुश के पैर तोड़ने का ऑर्डर तक दे दिया था। जिस कांस्टेबल के जरिए लीला अंकुश से बात करती थी वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लीला ने हड़बड़ाकर वेद की तरफ देखा। वेद के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुम जो कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लिखवा कर ले लो वेद सिंह चौहान, जिस दिन तुम्हारे घर वालों के सामने ये सच आ गया कि तुम अपने माता पिता के कातिल को उनके सिर आंखों पर बिठा कर रखते हो, उस दिन वो तुमसे नफरत करने लगेंगे, उनका विश्वास तुमसे उठ जाएगा। मुझसे ज्यादा गलतियां तो आपने की है मिसेज रजावत, आपके और आपके बेटे ने शिवांशा के साथ जो किया है वो मुझे सब पता है। अब आप भूल जाइए कि कभी अंकुश रजावत जेल से बाहर आएगा, वेद ने भौहें उठाकर जवाब दिया। लीला वहां से जाना चाहती थी। जाने से पहले उसकी नजर वेद के हाथ पर गई, जिसे अभी भी एल्बम पकड़ा हुआ था। लीला ने उसके हाथ से एल्बम छीनने की कोशिश की, लेकिन वेद ने उसे कसकर पकड़ रखा था। ये मेरा है, इसे मुझे वापस लौटाओ, लीला ने वेद को घूरते हुए कहा। ले लीजिए, आपको किसने रोका है, वेद ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। लीला ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन वो वेद के हाथ से वो एल्बम ले नहीं पाई थी। छीना झपटी करने के चक्कर में लीला को धक्का लगा और वो कुछ कदम लड़खड़ाकर पीछे गिर गई थी। वेद ने उसे देखकर हल्की मुस्कुराहट दी और फिर वहां से एल्बम के साथ चला गया था। उसने अपनी गाड़ी में सबसे पहले उस एल्बम को छुपाकर सुरक्षित रखा और फिर बाद में नव्यांशी से मिलने पहुंचा। तो वहीं लीला वेद के जाने के बाद कांस्टेबल से कांटेक्ट करने के चक्कर में लगी हुई थी। काफी देर बाद ही सही, लेकिन कांस्टेबल ने कॉल रिसीव कर लिया था। वो बोला, समझ नहीं आया मैडम, अचानक बड़े सर को क्या हो गया जो वो अंकुश साहब की सेल में गए और उन्हें बेवजह बहुत सारा पीटने लगे। उनका पैर टूट गया है और उन्हें अब सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा है। पूरी बात सुनकर लीला को झटका सा लगा। वो गुस्से में जोर से चिल्लाई और उसने कॉल कट कर दिया था। तुम ये जो कर रहे हो वेद सिंह चौहान, ये ठीक नहीं है, और तुमने मुझसे दुश्मनी लेकर बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब तक मुझे उस लड़की को तबाह करना था, लेकिन अब मैं तुम्हें भी किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी फैमिली तुम्हारी ताकत है, इस ताकत को तुमसे छीन नहीं लिया तो मेरा नाम भी लीला राजावत नहीं। लीला गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी।
वहीं वेद नव्यांशी के पास पहुंचा। नव्यांशी अभी भी अपने केबिन में परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी। वेद के आते ही वो जल्दी से उसके सामने गई और अपनी सफाई में बोली, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप उस औरत को जानते हैं कि वो जबरदस्ती करने लगती है और बहुत इरिटेट करती है। पहले हमारे घर चली आई थी तो अब मेरे काम करने की जगह पर आ गई। आई स्वेयर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। नव्यांशी अपनी तरफ से वेद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं वेद बिना किसी भाव के उसकी बातों को सुन रहा था। उसने गहरी सांस ली और नव्यांशी को अपने सीने से लगा लिया था। वेद उसे सहलाते हुए बोला, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर उस औरत पर नहीं है। वो झूठी है और अपनी बात साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। क्या लगता है कि वो कोई सबूत लेकर भी आएगी? वो सच होंगे क्या? बोलते हुए अपनी आदत के मुताबिक वेद ने नव्यांशी को खुद से जल्द ही अलग कर दिया था। वो ज्यादा देर तक किसी को हक करके नहीं रखता था, पता है, पर वो शिवांशा भाभी के पीछे इस तरह क्यों पड़ी हुई है? जहां तक मुझे पता है शिवांशा भाभी तो मनन की केयरटेकर थी ना, फिर उन्हें भाभी से क्या प्रॉब्लम है? नव्यांशी ने पूछा। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे और वेद जानता था कि उनका जवाब देना जरूरी था, वरना सच जानने के लिए नव्यांशी खुद पता लगाने निकलती तो उसके सामने शिवांशा का राज खुल सकता था। उसकी प्रॉब्लम तुम्हारी भाभी से नहीं बल्कि भाई से है। तुम्हें पता तो है कि शिवांशा की शादी पहले राजावत फैमिली में होने वाली थी। ऐसे में मैंने उससे शादी कर ली तो वो कुछ भी करके उसे वापस अपनी फैमिली में ले जाना चाहती हैं। उनका ईगो हर्ट हुआ है, वेद ने शांत लहजे में कहा। उसका ये बहाना काफी सही भी लग रहा था। नव्यांशी और उसके बाकी भाई बहनों को वैसे भी वेद की हर बात पर यकीन था। नव्यांशी ने बिना किसी बात के हां में सिर हिलाया और कहा, आप ठीक कह रहे हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाभी आपसे प्यार करती हैं और उन्हें दो प्यार करने वाले लोगों को समझना चाहिए। नव्यांशी की बात सुनकर वेद के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। उसे एक तरह से नव्यांशी के साथ टॉपिक चेंज करने का मौका भी मिल गया था। वो जल्दी से बोला, क्या बात है, आजकल प्यार मोहब्बत की बातें कुछ ज्यादा ही की जा रही हैं, कहीं तुम्हें तो कोई पसंद नहीं आ गया है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर होगा तो आपको जरूर बताऊंगी, नव्यांशी ने हड़बड़ाकर जवाब दिया और अपनी नजरें नीचे कर ली थी। नव्यांशी को भले ही महसूस ना हो रहा हो, पर वेद ने देखा कि उसके गाल हल्के लाल हो रहे हैं। फिलहाल वेद ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया और नव्यांशी को काम पर ध्यान लगाने का बोलकर वहां से निकल गया था। नव्यांशी से बात करके वेद अपनी गाड़ी में था और लीला के दिए गए एल्बम को देख रहा था। उसमें फैमिली फोटोज थे। अगर नव्यांशी उन तस्वीरों को देखती तो शायद उसे शिवांशा पर शक हो सकता था। वो फोटोज पुरानी थीं और किसी भी तरीके से मॉफ्ट नहीं लग रही थीं।
आज तो मैंने लीला और नवी को देख लिया था, लेकिन मैं हर बार लीला राजावत को रोक नहीं सकता हूँ। वैसे भी आज जो भी हुआ है उसके बाद वो और भी गुस्सा हो गई है। मुझे उसका कोई परमानेंट इलाज करना होगा, वेद ने मन ही मन कहा। वेद चाहता तो उस एल्बम को जला सकता था, लेकिन उस एल्बम में काफी सारी तस्वीरें थीं और कुछ तस्वीरों में नए चेहरे भी नजर आ रहे थे। जब वेद ने देवराज के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाई थीं, तब उनमें उन लोगों के नाम और चेहरे निकलकर नहीं आए थे। वेद ने उस एल्बम को प्रतीक को देते हुए कहा, प्रतीक, अगर इस दुनिया में मुझे खुद के अलावा किसी दूसरे इंसान पर यकीन है तो वो मेरे खुद के भाई बहनों से पहले तुम हो। ये एल्बम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके सामने आने पर शिवांशा का सच भी सामने आ सकता है। ऐसे में मैं आपको यही कहूंगा कि भाई आपको इसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, प्रतीक ने सलाह दी। अगर ऐसा किया तो मैं उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा जो इन फोटोज में हैं। प्रतीक, इनके बारे में पता लगाओ और ये हमारे लिए एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है। पर ध्यान से, गलती से भी इन सबको हम दोनों के अलावा और कोई नहीं देख सकता है। जिस तरह से लीला राजावत इसे छीनने में लगी हुई थी, उससे साफ था कि ये इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, वेद ने जवाब दिया। वो बार बार यही कह रहा था कि ये एल्बम किसी भी हाल में किसी और के सामने नहीं पहुंचना चाहिए। प्रतीक ने वेद की बात पर हां भरी। वेद चाहे कुछ भी कहे, लेकिन प्रतीक ने सेफ्टी के लिए उन फोटोज को जला दिया था जिनमें सिर्फ शिवांशा और देवराज साथ में थे, या फिर जो फोटोज जरूरी नहीं थी। न जाने क्यों उसे शिवांशा और वेद को साथ देखना अच्छा लगता था। ऐसे में उनका रिश्ता किसी भी तरीके से खतरे में ना आए, ये सोचकर प्रतीक ने ये सब किया था। वहीं दूसरी तरफ नव्यांशी अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी। हालांकि वेद ने उसे समझा दिया था और उसे उसकी बात पर यकीन भी था, लेकिन उसे लीला पर गुस्सा आ रहा था। उसे डर था कि कहीं लीला किसी साजिश से वेद को उसके प्यार से अलग ना कर दे। अपने गुस्से में और लीला का सच पता लगाने के लिए नव्यांशी ने अरमान को कॉल किया। आजकल किसी न किसी बहाने से अरमान और नव्यांशी की बात हो जाया करती थी। अरमान भी अब पहले की तरह उसे टालता नहीं था। इसी बहाने उसे शिवांशा की खबर मिल जाती थी और वो कभी कभार नव्यांशी को उकसा भी देता था, ताकि खुद को सही साबित करने के लिए वो शिवांशा के साथ प्यार से पेश आए। अरमान ने नव्यांशी का कॉल रिसीव किया तो वहीं दूसरी तरफ से नव्यांशी ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, आई नो मैं बार बार तुम्हें कुछ ना कुछ सुनाने के लिए कॉल करती हूँ, लेकिन इस बार तो हद हो गई। तुम्हारी बड़ी मॉम की वजह से मेरे और वेद भैया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और उनकी हरकतों की वजह से भाई और भाभी के रिश्ते पर भी असर हो सकता है। न जाने क्यों वो बार बार हमारे घर आ जाती हैं और शिवांशा भाभी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं। यही कहती हैं कि हम उनका सच नहीं जानते हैं। आज तुम बता ही दो, ऐसा क्या सच है जिसकी वजह से वो हमें परेशान कर रही हैं। वहीं नव्यांशी की बात सुनकर अरमान के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। नव्यांशी की बातों से साफ था कि लीला राजावत अभी भी शिवांशा के पीछे पड़ी हुई है और चौहान फैमिली के सामने उसके देवराज की पोती होने का सच लाना चाहती है। आज तो नव्यांशी ने उससे भी सीधे सीधे शिवांशा के सच के बारे में पूछ लिया था।